मंगलमय प्रवचन नमोस्तु महाराज।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे।
पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के उत्तम क्षमा धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, षोडश कारण भावना के साथ बीच में ही प्रारंभ होने वाला यह आध्यात्मिक पर्व श्रावकों के जीवन में एक नई अनुभूति, नया चिंतन, नई शांति, नया सुख प्रदान करके चला जाता है। साल में 10 ही दिन आता है और 10 दिन आता तो है, लेकिन उसे हम धारण नहीं कर पाते। केवल पूजन कर पाते हैं, वंदना कर पाते हैं, नमस्तु कर पाते हैं और करके 10 दिन के उपरांत हम अपने घर चले जाते हैं और ये 10 धर्म अगले वर्षीय लोकर या हमारे विदाई के लिए कारण बन जाते हैं। ये वैसा ही हो रहा है। ये 10 धर्म हमारे जीवन को जगाने के लिए आते हैं। हम इनको धारण नहीं कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते, धारण करने के लिए हम अभ्यास कर सकते और धारण ही करने के लिए आप तैयार हो जाएं तो उसके लिए जो जो आवश्यक बातें होती हैं उन आवश्यक बातों को स्वीकार यदि करते चले जाते हैं और फिर हम धारण करना चाहते हैं तो धारण भी कर सकते हैं, किंतु हमारा लक्ष्य केवल इनकी आराधना तक, इनकी पूजा तक ही सीमित हो तो फिर हमारे परिणाम, हमारी लेशा, हमारी कषाय, हमारे भाव सब शुभ के रूप में रहकर उसके माध्यम से कुछ शुभाश्रव हो जाता है और उत्तम क्षमा आदि क्या होते हैं इनका अध्ययन करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए उस पूजा के साथ अवसर प्राप्त होता है और इस अवसर के माध्यम से काम तो कुछ नहीं होता, संस्कार आते हैं, परंतु पूजा के माध्यम से ही हम संस्कार कब तक डालते जाएंगे ये प्रश्न है। हर साल इतना ही करेंगे, 10 दिन आ गए भाद्रपद में और हमने अपना द्रव्य जुटा लिया, सोले के कपड़े पहन लिए, मंदिर में आ गए, मुनियों के सानिध्य में गए और द्रव्यों को चढ़ा चढ़ा करके हे उत्तम क्षमा स्वाहा, हे उत्तम मार्दव स्वाहा, 10 दिन स्वाहा स्वाहा कहा और अगली वर्षी लौकरिया ये भी कहा और चले गए। तो इसके माध्यम से हम क्या साध रहे हैं, क्या हो रहा है, इस संबंध में भी विचार करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। ये धर्म धारण करने के लिए है या पूजन करने के लिए, यही पता नहीं हमें। धारण करने के लिए है कि पूजन करने के लिए है, धारण करने के लिए, और जो धारण करते हैं वो पूजन नहीं करते, जैसे मुनि महाराज। ये उत्तम 10 धर्म जिसके पीछे, प्रत्येक धर्म के पीछे उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है, और चत्तारी मंगल, चत्तारी उत्तम, चत्तारी शरण, 4 मंगल है, 4 उत्तम है, 4 शरण है। साधु परमिष्टि उत्तम में भी आते हैं, मंगल में भी आते हैं और शरण में भी आते हैं। मुनि ही मंगल हैं, 5 परमिष्टि हैं, जो सिद्ध परमिष्टि और अरहंत परमिष्टि को अलग कर दो, क्योंकि 10 धर्मों से उनका कोई संबंध इसमें नहीं है। 10 धर्मों का संबंध 3 परमिष्टियों से है। हाँ, आचार्य, उपाध्याय और साधु। महाराज क्यों फिर सिद्ध परमिष्टि और अरिहंत परमिष्टि वे 10 धर्म के गुणों को धारण नहीं करते हैं क्या? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। 10 धर्म को कौन धारण करते हैं? तो धारण तो वही करते हैं जिनके पास मोहिनी कर्म विद्यमान है। उनको हटाते हैं और उनके अभाव में जो धर्म प्रकट होते हैं उनको वो स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अंदर की बात जब तक पता नहीं चलती तब तक ये 10 धर्म क्या हैं और उनके प्रति हम हर साल क्या कर रहे हैं ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये 10 धर्म किसके जीवन के धर्म हैं? मुनि के जीवन के धर्म हैं, और मुनि में मोहिनी कर्म होता है क्या? नहीं। जो 8 कर्मों में से एक कर्म है मोहिनी कर्म, 28 प्रकृति जिनके हैं, मुनि में मोहिनी कर्म होता है। और फिर श्रावक में मोहिनी कर्म होता है कि नहीं? उनमें भी मोहिनी कर्म होता है, इनमें भी मोहिनी कर्म और उनमें भी मोहिनी कर्म। और फिर यदि श्रावक क्षमा धारण कर ले, मान कषाय छोड़ दे और मायाचारी कम कर ले और लोभ भी छोड़ दें, लेकिन वस्त्र न छोड़े, वस्त्र धारण करके कभी क्रोध नहीं करेंगे, मानी नहीं बनेंगे, अहंकार छोड़ देंगे, मायाचारी नहीं करेंगे और लोभ भी नहीं करेंगे, एक वस्त्र को रख करके बाकी किसी भी पदार्थ को देखकर या वस्त्र को देखकर हम इतना लोभ भी नहीं करेंगे, ऐसा यदि वह संकल्प लेता है और किसी भी प्रकार से उपसर्ग आने पर उसके ऊपर, उपसर्ग 2 के ऊपर आप आ सकता है दो के ऊपर, आपके परिग्रह पर उपसर्ग आ सकता है और आपके स्वयं के शरीर पर भी उपसर्ग आ सकता है। कोई आपके परिग्रह को सामने से उठा के ले जा रहा है, कोई बाहर से व्यक्ति आया और टीवी उठा करके ले चला, आप चुपचाप बैठेंगे? यदि चुप बैठ गए तो उत्तम क्षमा है, और यदि प्रतिकार के भाव आ गए तो उत्तम क्षमा नहीं है। तो जो उठा के ले जा रहा था उसको देख करके हमें गुस्सा आया, क्योंकि पूछा नहीं, कुछ नहीं, जानकारी भी नहीं दिया कि कहाँ से आ गया, क्या आ गया, और टीवी उठा करके ले जा रहा है, कनेक्शन तोड़ रहा है, कुछ नहीं कहा, एकाएक आया। और फिर आपने क्षमा तो कर लिया कुछ समय के लिए, पहले देख तो ले इसको, रोके कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है, एकदम गुस्सा तो नहीं किया आपने, लेकिन आखिर हाथ पकड़ करके रोका तो सही, ठहरो तुम कौन हो, पूछा तो सही। अगर इतना भी नहीं पूछते तो आपके शरीर पर जो वस्त्र है ना, वे सब औपचारिक रूप से ही होते और उत्तम क्षमा आपके पास लगभग करीब 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 मंजिल पर आप पहुंचने वाले माने जाते। एक टीवी, उसको निमित्त बना करके हमें विकल्प आ सकते हैं, तो वस्त्र को निमित्त बना करके क्या विकल्प उत्पन्न नहीं हो सकते? इससे ही ज्यादा होते हैं। वस्त्र के बिना हम कब रह पाए हैं? टीवी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन वस्त्र के बिना हम कब रह पाए हैं, कितने दिन रह पाए हैं? और वो सही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, वो करेक्ट पॉइंट पर ही अटैक करते हैं। आप करके आए, हम जन्म के साथ कैसे आए थे, हाँ? वस्त्र पहन करके आए थे। सभी लोग, कोई भी जीव, वो परिग्रह से मुक्त होकर के ही जन्मता है, ये प्रकृति नियम है। और इस प्रकृति नियम को तोड़कर, छेद विच्छेद करके हम अपने नया जीवन बना लेते हैं, इसी का नाम संसार है। पूर्व में जो था उसको तोड़ना, उसको भंग करना और अपना नया संविधान बना करके जीवन बना लेना, ये नया संसार है। इस संसार, नया संसार को जब हम धारण करते हैं तो उस समय उत्तम क्षमा आदि धर्म नहीं रह पाते। तो क्या जन्म के टाइम में उत्तम क्षमा आदि थे? उस समय में भी नहीं रहे, तो नग्न तो थे अपन, कोई वस्त्र नहीं था और कोई घर नहीं था, और जहां हम जन्म ले रहे हैं उस बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं, गर्भ में है वो, कुछ भी नहीं जानता, सब छोड़ करके आया है। पिछले भव के सारे 10 परिग्रहों को मरण के काल में उसको ले तो आ नहीं सकते, छोड़ करके आया है, और आकर के गर्भ में जीव जन्म लेता है, आत्मा जन्म लेता है, वहां पर उसको उत्तम क्षमादि धर्म क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है ना, तर्क तो करना पड़ेगा। उत्तम क्षमादि धर्म गर्भस्थ उस आत्मा को होना ही चाहिए, उसका न वस्त्र है न क्षेत्र है, न वास्तु है, न सुवर्ण है, न धन धान्य है, न दासी दास कुछ भी नहीं है, दस परिग्रह है नहीं। लेकिन फिर भी उत्तम क्षमादि धर्म वहां नहीं है तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, बाह्य परिग्रह तो वहीं छोड़ के आया है वो पूर्व भव में, लेकिन परिग्रह के ममता को छोड़ करके मरण किया है कि बोलो नहीं किया है? परिग्रह के ममता को छोड़ करके अगर आता तो रहते क्या? तो भी नहीं रहते, किसी भी गति में जाओ आप तो भी उत्तम क्षमादि धर्म नहीं होते, क्योंकि हम जो बाह्य परिग्रह के प्रति रहने वाले मूर्छा भाव, ममत्व भाव, राग भाव, लोभ भाव, ये जो त्याग देते हैं ना, ये त्याग केवल इस मनुष्य पर्याय के समाप्ति तक सीमित है, संयम साथ नहीं आता, संयम साथ नहीं आता। मनुष्य पर्याय जब तक है तब तक साथ रहता है, किसके जीवन में? वो भी मुनि के जीवन में साथ रहता है। अब वो मुनि महाराज समाधि मरण, संलेखना मरण कर रहे हैं, और संलेखना के काल में कोई भी मूर्छा भाव नहीं दस परिग्रह के प्रति, ना अपने को इस भाव में चाहिए ना उस भाव में चाहिए, लेकिन उस भाव में तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। नहीं भी चाहते हैं तो वहां पर जा करके बैठना पड़ेगा, बंधन में बैठना पड़ेगा। आप नहीं भी चाहते हैं तो गर्भ में आना ही पड़ेगा, दूसरे के बंधन में रहना ही पड़ेगा। इस बंधन को तो तीर्थंकरों ने भी स्वीकार किया, तीर्थंकरों की आत्मा ने भी गर्भ में नौ माह व्यतीत किया। ये गर्भ में रहने का ये बंधन जो है, ये बंधन नहीं है क्या? बंधन है, जबरन बंधन है। ये कर्मों के द्वारा इस बंधन को दिया जाता है, कर्म हमारे लिए ये बंधन दिलाते हैं। स्वर्ग में जाए तो उपाद शैया में प्रवेश करना पड़ता है, नरक में जाए तो भी उपाद शैया, मुलायम मुलायम गादी है क्या? नरक में जाए तो विलोम में प्रवेश करना पड़ता है, विलोम में योनि स्थान है, जीव को पुनर्जन्म लेने के लिए वातावरण है, वहां बिल है। स्वर्गों में उपाद शैया है, ये सारे बिल पटलों में हैं, पटल नरकों में हैं। नरक में पटल, बड़ी बड़ी पृथ्वियां, पाषाण की प्लेट, पृथ्वी की प्लेट, प्रत्येक नरक में इतने इतने पटल हैं, और प्रत्येक पटल में असंख्य असंख्य बिल हैं। उन बिलों में जाकर के नारकी जीव जन्म लेता है, वहां पर भी प्रवेश है, बिलों की शरण में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में उपाद शैया की शरण में जाना पड़ेगा, त्रिरंश गति में वहां पर भी है। हाँ, सम्मूर्छन जन्म का स्थान वातावरण, कहीं ना कहीं हमको प्रवेश करना ही पड़ता है, और जहां पर हम प्रवेश करते हैं यहां से निकलते समय असंयम के पहला, दूसरा या चौथा गुणस्थान इन तीन में से एक होता है। आप दूसरे गति में जन्म लेने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इन तीन में से एक गुणस्थान की शरण लेकर के ही जाना पड़ेगा। कौन कौन से गुणस्थान? पहला, दूसरा या चौथा। मरण ऊपर के गुणस्थानों में हो सकता है, मरण तो ग्यारहवें गुणस्थान तक कहीं भी आप कर सकते हैं, ग्यारहवें गुणस्थान तक मरण हो सकता है, लेकिन मरण के पश्चात इस शरीर को छोड़कर जब आप रवाना होंगे उस समय आपको ये आयु समाप्त होगी जो मनुष्य आयु चल रही है, वर्तमान की आयु समाप्त होगी और आगामी आयु को आप जो बांधे थे, पहले से बांध चुके बांधे थे, तीसरे भाग में वो उसका उदय होता है, उसके उदय के साथ ही इन तीन में से एक गुणस्थान कंपलसिर बनता है। हाँ, विग्रह गति में, विग्रह गति में तीन ही गुणस्थान है, इससे ज्यादा नहीं, विग्रह गति में तीन ही, जो पुनर्जन्म लेने के लिए जा रहा है उनकी अपेक्षा से तीन ही गुणस्थान है विग्रह गति में जाने वाले जीव को। और विग्रह गति से पहले यहां से जब बाहर निकला शरीर को छोड़ करके, वो आगामी आयु क्यों, आयु का उदय आने के बाद ही बाहर निकला, जब तक एक समय का, एक सेकंड का आयु भी मनुष्य आयु यहां पर थी तब तक वह मनुष्य शरीर में ही था। मनुष्य आयु समाप्त हुए बिना मनुष्य शरीर को छोड़ता नहीं, यहां से निकला, निकला तो कहां जाना है, तो देवगति में। तो किस गुणस्थान में मरण हुआ, तो श्रावक हो तो चौथा, सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो चौथा, तो चौथे में मरा तो चौथे के साथ ही गया, मरण अगर चौथे में हुआ तो चौथे के साथ ही जाएगा, क्योंकि ये जन्म का भी है और मरण का भी, ये गुणस्थान। जरा इसको ध्यान से और गौर से सुन करके जरा चिंतन भी करना है। मुनि महाराज मरण करते हैं छठे सप्तम गुणस्थान में, या छठे से लेकर ग्यारहवें तक, सौनन की अपेक्षा से लगा दो उसको, ग्यारहवें तक कहीं भी मरण हो सकता है। मरण किया किसी भी एक गुणस्थान में, तो कौन सा मरण किया उन्होंने, पंडित मरण किया, और श्रावक ने चौथे गुणस्थान में मरण किया तो कौन सा मरण किया, बाल मरण, बाल मरण, दो बार बाल मत लगाओ, एक ही बाल लगाओ काफी है। बाल बाल मरण करने वाला या तो दूसरे में मरता है या तो पहले में मरता है, चौथे में मरण करने वाला बाल मरण करता है, पांचवे में मरण करने वाला बाल पंडित मरण करता है, और छठे में, छठे से लेकर ग्यारहवें तक मरण करने वाला पंडित मरण करता है, और चौदहवें गुणस्थान में भी मरण है, मोक्ष जाते समय होता है, मोक्ष के काल में वो पंडित पंडित मरण है। पंडित शब्द कहां से जुड़ गया, देखो कहां से जुड़ गया, पंडित शब्द कहां से जुड़ गया, पांचवे से, पांचवे गुणस्थान से, वहां पर कौन सा मरण हो रहा है, बाल पंडित, ये बाल भी है और पंडित भी है, पंडित को एक बाल है। ये इस पंडित को एक बाल है, पंचम गुणस्थान में वह जो बाल शब्द जुड़ा हुआ है किस कारण से जुड़ा हो, नहीं, व्रती होने से तो पंडित है वो, हाँ, व्रती होने से तो पंडित कहलाएगा, एक देश जो त्याग किया है उस कारण से वो पंडित है, परंतु बाल शब्द क्यों जुड़ गया, ये प्रश्न है, पूर्ण त्याग नहीं, तो जो है उसके वजह से जुड़ गया ना, तो क्या है वो तो बाल तो है। पतंग को जब उड़ाते हैं आकाश में तो उसके लिए एक बालवास लगता है, बालवास बोलते कन्नड़ में, कन्नड़ में, मराठी में क्या बोलते हैं? नीचे एक रस्सी बांध लेते हैं ना, वो ऐसे लटकता रहता है, सेपू। हाँ, सेपू, सेपुट, सेपुट। हाँ, पूंछ, पूंछ बोलते हैं कन्नड़ में, पूंछ को बाल बोलते हैं, बाल। तो पतंग को भी एक शेपुट होता है ना, वो शेपुट का नाम बाल है, वो परिग्रह है। जिसको शेपुट होता है वह बहुत दूर तक नहीं जा सकता आकाश में, क्योंकि वह वजनदार होता है, उसको लेकर के उड़ना संभव नहीं है। और शेपुट के बिना भी एक पतंग होता है, वो भी उड़ता है आकाश में, वो उससे ऊपर उड़ता है, उसको शेपुट नहीं होता। कभी पतंग उड़ाया कि नहीं छोटी अवस्था में? उड़ाया, उड़ाया। तो शेपुट यदि न हो तो पंडित मरण। और यदि शेपुट हो तो बाल पंडित मरण, क्योंकि पतंग उड़ रहा है ये पंडित है, लेकिन शेपुट के साथ उड़ रहा है ये बाल पंडित है। हाँ, और पतंग को यदि आपने पत्थर ही बांध लिया तो वो उड़ेगा नहीं, वो उड़ेगा नहीं, वो बाल है, बाल है, वो बाल है। और पत्थर को, पतंग को पत्थर भी बांधा और पानी में छोड़ दिया तो पतंग खराब हो जाएगा। ये तो बचा हुआ है, थोड़ा सा पत्थर खोल दिया तो उड़ सकता है, किंतु पानी में ही डाल दिया तो ये उड़ने लायक नहीं है। और फिर क्या करना पड़ेगा? पत्थर को भी खोलो और पतंग पानी में अगर गिर गया है तो उसको उठा लो जल्दी और सुखा दो, सुखा दो, और फिर पत्थर मत बांधो और उड़ा दो। उड़ सकता है कि नहीं? फिर वो शेपुट के बिना अगर है तो पंडित मरण करेगा, अगर शेपुट के बिना है तो पंडित मरण करेगा। और आप उड़ाते समय अपने पतंग को देखते हैं, शेपुट तो बांधा नहीं और उड़ाया फिर भी उड़ नहीं रहा है, तो क्या करें? जिस पतंग को शेपुट नहीं बांधते हैं ना, वो पतंग क्या करता है मालूम? गर 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 घूमता है वो, वहीं वो उड़ना ही नहीं चाहता, ऐसा न घूमे वो, इसलिए शेपुट बांधा जाता है। हमको सब मालूम है। ये सब देखा है। और वो घूम न ले इसलिए शेपुट बांधा जाता है, उड़े अधिक से अधिक उड़े लेकिन घूमते हुए ना उड़े, घूमता हुआ उड़ेगा तो हमारी डोरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। डोरी कटना नहीं चाहिए, डोरी न कटे इसलिए हम शेपुट बांधते हैं। और जो पतंग डोरी शेपुट को बांधे बिना घूमता नहीं है वो पतंग बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे लक्षण होते। आपका पतंग कैसा होना चाहिए? अच्छा लक्षण वाला पतंग होना चाहिए, जो उड़ाने के बाद भी चक्कर न काटे, ऐसा पतंग होना चाहिए। ये पतंग सबसे बढ़िया रहता है। जब तक हमारे पास बाह्य परिग्रह होता है तब तक देखो बाल बाल शब्द लग रहा है। पहले गुणस्थान में परिग्रह होता है, बाल शब्द लगा। अंतरंग परिग्रह हो या बहिरंग परिग्रह हो, परिग्रह होने मात्र से बाल शब्द लगता है, बाल शब्द लगता है। और फिर आपने पतंग बना लिया उड़ाने के लिए, कौन सा पतंग बनाया? तो हमारे आत्मरूपी पतंग उड़ना चाहिए। तो क्या कर दिया आपने अपनी आत्मा को? तो उड़ाने लायक बनाया। पहला क्या था फिर? वो तो कागज था। कागज को क्या किया? उसके लिए ऐसे ऐसे कुछ आकार दे दिया पतंग के आकार से, और उस ढंग से एक लकड़ियों को चिपका दिया, छड़ों को चिपका दिया, ऐसा ऐसा गोल चिपका दिया और पतंग बन गया। कागज था उस समय, वो कागज मात्र मिथ्यात्व के रूप में था, लेकिन अब पतंग के आकार में आ गया। ये पतंग का जो आकार वाला कागज है ना, वो सम्यक दर्शन, लेकिन उसके नीचे जो शेपुट है ना, वो अंतरंग बहिरंग परिग्रह, ये आकाश में वो उड़ तो सकता है, अब पेपर भी उड़ सकता है, लेकिन उड़ करके वहीं गिरेगा, आकाश में नहीं उड़ेगा। वो पतंग मत बनाओ, और एक कागज ले लो पतंग के आकार का, और उसको ले लो आकाश में, इसे छोड़ दो रस्सी बांध करके, उड़ जाएगा नहीं। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग में हम उड़ नहीं सकते, सम्यक्तु से ही उड़ना प्रारंभ होता है। सम्यक्तु आ गया तो पतंग बन गया है, अब हम उड़ सकते हैं, भरोसा आ गया। लेकिन उड़ते उड़ते इतना भी नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमारे पीछे एक शेपुट भी है, वो परिग्रह है, और वह परिग्रह जब तक जाता नहीं तब तक ये दश धर्म जीवन में आते नहीं। इसलिए तीन ही परमेष्टि उत्तम दश धर्म के अधिकारी हैं, क्योंकि उनको शेपुट नहीं। कितना फिट उदाहरण, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब शेपुट के बारे में ही चिंतन करना घर जा करके, हम इधर उधर घूम करके वहीं आ जाते हैं। आपके ग्रंथ को, आपके परिग्रह को कभी शेपुट कहते हैं, कभी पोपट कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उपदेश तो उदाहरणों के माध्यम से दे करके भव्य जीवात्मा को वहीं लाना पड़ता है, दर्शन ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन हमारा पतंग है, किंतु आकाश में, आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ाने के लिए शेपुट बाधक है, और शेपुट निकाल करके हमने उड़ा दिया तो जाता ही है, बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है, तो निस्संग है वो पतंग। निस्संग यानी संग से रहित, सेपुट से रहित, परिग्रह से रहित, हल्का। अधिक ऊंचाइयों की अनुभूति किस पतंग को मिलती है? सेपुट रहित पतंग को ऊंचाइयों की अनुभूति मिलती है, और सेपुट सहित पतंग को जरा कम ऊंचाई की अनुभूति मिलती है, लेकिन यह पंचम गुणस्थान की अनुभूति है। चौथे गुणस्थान में क्या हुआ है? पतंग बना है, परंतु वो पतंग घूमने लगा, इसलिए शेपुट डालना पड़ा। और पंचम गुणस्थान में शेपुट सहित पतंग है, उड़ तो रहा है लेकिन ऊंचाई तक छू नहीं रहा है, और वह पतंग चाहता है कि मुझे भी आत्मानुभूति हो जाए, मुझे भी आत्मानुभूति हो जाए। ये अपेक्षा तो उसको है, लेकिन आत्मानुभूति के लिए शेपुट कितना बाधक है? वो ऊंचाइयों को छूने नहीं दे रहा है, ऊंचाइयों को छूने नहीं दे रहा है। तो जब तक शेपुट को हटाएंगे नहीं, तब तक उस पतंग में दश धर्म उत्पन्न नहीं होते। शेपुट के कारण से उड़ नहीं पा रहा है, ऊंचाइयों को छू नहीं पा रहा है, जहां तक जाना चाहिए वहां तक जा नहीं पा रहा है। और जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। इस पतंग में ही ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहिए कि वो शेपुट के बिना उड़ जाए। तो कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो जिस कागज को उपयोग करने से, जिस कागज से पतंग बनाने से यह चक्कर काटे बिना सीधा ऊपर उड़ सकता है, उस कागज को लाओ। कागज चेंज करना पड़ो तो चेंज करो, और चेंज होता ही है। चौथे गुण स्थान का सम्यक्तु, वह सम्यक्तु का पतंग, और छठे गुण स्थान का सम्यक्तु का पतंग एक नहीं, पंचम गुण स्थान का सम्यक्तु का पतंग एक नहीं, ये सम्यक्तु तीनों अलग अलग हैं साधकों के पास। वह सम्यक्तु छठे गुण स्थान वाला वो क्वालिटी का है, और उसमें तीन अंतरंग परिग्रह नहीं है। ये तीन फुट का जो शेपुट है ना, तीन फुट का शेपुट वो है ही नहीं। कहां पर? छठे गुण स्थान में वो तीन फुट का है। पहला फुट वाला अनंतानुबंधी, दूसरा फुट वाला अप्रत्याख्यानावरणी, और तीसरा फुट वाला प्रत्याख्यानावरणी। इन तीनों शेपुटों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतरंग परिग्रह हैं, ये पतंग को नीचे खींचते हैं। और हमारा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चाहता है कि आकाश में उड़े, ऐसा उड़ नहीं सकता। केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से किसी को भी केवल ज्ञान आज तक नहीं हुआ, मोक्ष भी नहीं हुआ और केवल ज्ञान भी नहीं हुआ, और वे पंच परमेष्टि की कोटि में भी नहीं आए, वे गुरु के कोटि में भी नहीं आए। देखो कितना डेंजर है शेपुट। हमें भगवान तो बनने देता ही नहीं, लेकिन गुरु भी बनने नहीं देगा। वो कैसे पंच परमेष्टि के नमोकार मंत्र में प्रवेश करोगे शेपुट को रखकर? परिग्रहधारी जीव कभी भी पंच परमेष्टियों के बीच में बैठकर वंदनी पूजनी नहीं हो सकता। इसलिए जैन मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है, जैन मार्ग अपरिग्रह मार्ग है, इसमें परिग्रह बाधक है। और अन्यत्र आप परिग्रह बाधक है ये नहीं कह सकते, अन्यत्र परिग्रह के लिए छूट है, परिग्रह सहित मोक्ष है। लेकिन वह कथन केवल कथन ही है, प्रैक्टिकल में उतरोगे, ध्यान में बैठोगे परिग्रह सहित, ध्यान में बैठोगे आंखें खोलोगे, हम तो मध्य लोक में ही बैठे हैं अभी हम मोक्ष नहीं गए, क्या बात है? परिग्रह रख करके सब कुछ त्याग करने पर, ध्यान करने पर, आत्मा को विशुद्ध बनाने पर मोक्ष होता है कह रहे थे वो कह रहे थे, तो कौन कह रहे थे? ये सर्वज्ञ की वाणी नहीं थी, ये छद्मस्त की वाणी थी, जनवाणी थी, जिनवाणी नहीं थी, जनवाणी थी। पतंग को पत्थर बांधा है और आकाश की ऊंचाइयों को छू लें, ये कैसे संभव? ये निर्ग्रंथ मार्ग में तो मान्य नहीं है। तो निर्ग्रंथ आज न कल बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं कि हमको वस्त्र सहित भी सब कुछ हो सकता है क्या? संशय में मत पड़ो, होने वाला नहीं है गारंटी है, होने वाला नहीं है गारंटी है। इसलिए तो परमेष्टि पांच ही हैं। यदि मोक्ष होता तो मोक्ष जिसको होता है उन सबको नमोस्तु करते हैं। मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरूपामिति स्वा, हम पंच परमेष्टियों को इतना ही कहते हैं कि सबको कहते हैं। गृहस्थ की पूजा नहीं, आरिका की पूजा नहीं है जैन धर्म में। क्यों नहीं? सिपुट है बस कहने के लिए यह सूत्र मिल गया, अच्छा सिपुट का, सिपुट कहते ही अब बिल्कुल ख्याल में आ जाता है आरिकाओं को हम पूजते नहीं हैं। क्यों नहीं पूजते? पंच परमिष्ठियों में नाम नहीं आया इसलिए हम नहीं पूजते। हम नमोस्तु नमोस्तु पांच ही बार तो कह रहे हैं नमोकार मंत्र में, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवोसावनम, इतना कह करके नमोकार मंत्र को खत्म करते हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ते? नमो आरिकानम, मुनि के पीछे तो आरिकाएं हैं, नंबर तो उनका है ना, मुनि के बाद कौन है? आरिका। आरिका के पीछे कौन है? अइलक। उनके पीछे कौन है? शुल्लक। उनके पीछे कौन है? दसवीं प्रतिमाधारी। उनके पीछे कौन? नौवीं प्रतिमाधारी। उनके पीछे आठवीं प्रतिमाधारी, फिर पीछे पीछे पहली प्रतिमा तक ये सभी श्रावक हैं जो पंचम गुणस्थान के हैं। सबके पास से पुट है इसलिए ये वंदनीय नहीं है। और इनके पास उत्तम क्षमा आदि धर्म कहाँ से आएंगे? सेपुट खोले बिना उत्तम क्षमादि धर्म आते नहीं। हमने टीवी का उदाहरण दिया, ये छुल्लक, कैलक, आरिका आदि, इनके पास कौन सा परिग्रह है? वस्त्र परिग्रह है या तो पात्र परिग्रह है, दो ही परिग्रह है, ज्यादा तो है नहीं। खाने के लिए छुल्लक वस्त्र पात्र लेते, एक पात्र रखते साथ में, और क्या रखते हैं? पहनने के लिए एक लंगोटी और ऊपर एक ओढ़ने के लिए दुपट्टा। अइलक क्या रखते हैं? और भी कम रखते हैं, एक लंगोटी और खाने के लिए जो पात्र था उसको भी छोड़ देते हैं और दुपट्टा भी छोड़ देते हैं, तो ये अइलक कहलाए। और आरिका क्या रखती है? आरिका तो केवल एक वस्त्र रखती है, लेकिन आरिका के पास वस्त्र अइलक से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी मुनि के पीछे, फिर भी मुनि के पीछे। तो परिग्रह की क्वांटिटी अइलक के पास अधिक है क्या आरिका के पास? फिर भी मुनि के पीछे क्यों? जिसके पास कम परिग्रह वो पहला आना चाहिए मुनि के पीछे है? नहीं, वो कारण नहीं। देखो, कहते हैं कि आरिका को वस्त्र छोड़ने के परिणाम सतत रहते हैं, उसमें मूर्छा भाव नहीं रखती, फिर भी रखना पड़ता है। कषाय मंद है, अब प्रत्याख्यानावरणी कषाय, हाँ प्रत्याख्यानावरणी कषाय मंद है, किसकी? आरिका की। और अइलक छोड़ सकता है फिर भी नहीं छोड़ रहा है, तो ये मूर्छा भाव सिद्ध होता है। यहाँ देखो कैसे वो ये न्याय करने के लिए आते हैं, अइलक मेरे पास तो क्वांटिटी कम है, मुझे क्यों मुनि के पीछे नहीं रखते? नहीं रखेंगे, तुम थर्ड नंबर हो, और थर्ड नंबर को थर्ड क्लास ही कहेंगे हम। जिसके पास मूर्छा नहीं है वो सेकंड क्लास, मंद कषाय है वो सेकंड क्लास, और वो थर्ड क्लास। जिसके पास छोड़ने की योग्यता है, अर्हता है, पात्रता है, और फिर भी छोड़ता नहीं, इसका अर्थ है कि मूर्छा तो है ही, इसलिए वो थर्ड क्लास। लेकिन गुणस्थान सबका एक, पंचम गुणस्थान, आरिका का पंचम गुणस्थान, अइलक का पंचम गुणस्थान, छुल्लक का पंचम गुणस्थान, सभी प्रतिमाधारियों का पंचम गुणस्थान। ये पंचम गुणस्थान वर्ती कोई भी साधक वंदनी पूजनी अर्चनी नहीं है। ये सब त्यागी हैं, एक देश परिग्रह का त्याग करने वाले। सेपुट काट दिया एक फुट दो फुट, अब एक ही फुट रह गया, काट के अलग कर दिया, फिर भी वंदनीय पूजनीय नहीं है। इनमें दशधर्म उत्पन्न नहीं हुए, और जिनके पास दशधर्म उत्पन्न हो जाते हैं उनके पास सेपुट होता ही नहीं, वो है मुनि। और इसलिए नमोकार मंत्र में पांच ही परमिष्टियों की पूजा के लिए आपको निर्देशन दिया गया है। आप जपते हैं पांच के नाम को ही जपते हैं, नमस्कार करते हैं, नमोस्तु कहते हैं तो पांच को ही करते हैं, और किसी को करते? महाराज करते तो हैं, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इनको भी तो हम नमोस्तु कहते हैं। बिल्कुल आप नमोस्तु कहते हैं, लेकिन इनका अंतर्भाव पंच परमेष्टियों में ही हो जाता है, चार का। जिन धर्म क्या है, जिन धर्म क्या है, परिग्रह रहित धर्म जिन धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित और परिग्रह से मुक्त, शेपुट मुक्त, जैन धर्म को शेपुट नहीं है, इसलिए उसकी वंदना की जाती है। धर्म वंदनीय है जिसका शेपुट नहीं है। एक ये हुआ, जैन धर्म तो किसमें अंतर्भाव हुआ, ये मुनि अरहंत सिद्ध परमेष्टि इनमें अंतर्भाव हुआ। ये धर्म जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। धर्म किसको कहते हैं, जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। वह दस प्रकार का, उत्तम क्षमा मार्दव आदि, ये दस प्रकार का, इसको ही धारण किया जाता है। धारण कैसे किया जाता है, सेपुट को अलग करके इनको धारण किया जाता है, सेपुट को रख करके ही इनका धारण संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि सेपुट को देखो, क्योंकि सेपुट को कोई दूसरा आकर के हाथ लगाएगा तो आपकी पूंछ है वो। सेपुट यानी पूंछ, पतंग की पूंछ। कोई भी हाथ लगाएगा तो आप सेपुट को यूं यूं करेंगे क्या नहीं? भैंस के सेपुट को आप हाथ लगा के बताओ, हाथी के सेपुट को हाथ लगा के बताओ, चुप रहेगा क्या? हाथी उसके सेपुट को केवल स्पर्श भी किया तो यूं खड़ा होकर, रिटर्न होकर के, उल्टा होकर के देख लेता है कौन है ये। तो सेपुट वाला हाथी, वो अगर उसको गुस्सा आ गया, उत्तम क्षमा तो है ही नहीं, सेपुट के स्पर्श से ही गुस्सा आया ना हाथी को, तो हाथी को अगर गुस्सा आया और आंख खोल करके यूं देखने लगा तो वो इतना प्रयत्न प्रयास तो नहीं करेगा कि वो आपको वापस आकर के सूंड से या उससे बदला ले ले, वो सेपुट से ही जोर से मारेगा। और उसका सेपुट इतना मजबूत होता है कि आप गिर पड़ते हैं। देखो, हाथी को अगर सेपुट होता, होता तो है, नहीं होता तो क्या होता? हाथी को सेपुट ही नहीं होता तो सेपुट को कोई छूता नहीं, और हाथी को सेपुट है इसलिए छू रहे हैं लोग, और जो छू रहे हैं उसी कारण से हाथी को गुस्सा आ रहा है। तो ये क्रोधादि जो अंतरंग के चार कषाये हैं, ये क्यों उत्पन्न होती है? परिग्रह रखने से। ये असली सत्य जो है आज समझ में आ गया। दश धर्म दश हैं। क्रोध अगर आपने छोड़ दिया तो वहां पर मान भी नहीं रह सकता, माया भी नहीं रह सकती, लोभ भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये शेपुट एक के कारण से होते हैं चार, और ये शेपुट किसी की छोटी है और किसी की बड़ी है। पहले गुणस्थान में 3 फुट की शेपुट है, जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के हिसाब से वो 1-1 फुट का है वो, और चतुर्थ गुणस्थान में 2 फुट की शेपुट है, और पंचम गुणस्थान में 1 फुट की शेपुट है, और छठे गुणस्थान में शेपुट मुक्त है, नहीं है। जैन धर्म कैसा है देखो तो, ये सिद्धांत है, इसको कहते हैं जैन धर्म। ये कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं, साधना करने वालों का धर्म है और सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है। ऐसा नियम है क्या कि जैन लोग अगर शिवपुट को छोड़ते हैं तो वे ही केवल मोक्ष होते हैं, मोक्ष जाते हैं, अन्य कोई जाता नहीं, ऐसा नियम बना सकते? गौतम, गंधर्व, महावीर भगवान के शिष्य थे, वो कौन थे? ब्राह्मण थे। जैन थे क्या? उन्होंने क्या छोड़ा? शिवपुट छोड़ा? ब्राह्मण हो शिवपुट छोड़ करके ही मोक्ष जाना पड़ेगा, शूद्र हो शिवपुट छोड़ना पड़ेगा, जैन हो शिवपुट छोड़ना पड़ेगा। यहां पर हम जन्म के साथ शरीर की अपेक्षा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माने जाते हैं। शरीर की अपेक्षा से जन्म के पश्चात व्यवसाय के आधार से ये नाम पड़ते हैं। ये चार वर्ण क्या हैं? ये व्यवसाय की अपेक्षा से जो व्यापार उद्योग करना जिनका जीवन का व्यवसाय है, जीवन है, जीवन का आधार है, वो वैश्य कहलाता है। आत्मा वैश्य है क्या? नहीं है। हमारे शारीरिक जो व्यवसाय उद्योग हो रहे हैं ये वैश्यपना इसमें है। हमारा बाह्य जीवन वैश्य है, अंतरंग जीवन तो अलग ही है। आत्मा आत्मा है, कषाय कषाय है, परिग्रह परिग्रह है। जैन का परिग्रह अलग होता है और ब्राह्मण का परिग्रह अलग होता है, ऐसा कुछ है? आप जो खाते हैं वो ही वो खाते हैं, आप भी रोटी खाते हैं वो भी रोटी खाते हैं, परिग्रह में कोई अंतर नहीं है। आप भी टीवी देखते हैं वो भी टीवी देखते हैं और एक ही दुकान से दोनों टीवियों को लाए हैं, और लाने के बाद ऐसा कहोगे क्या ये हमारे घर में है इसलिए ये जैन टीवी, और उस दुकान से जो ब्राह्मण खरीद के ले गया और उनके घर में वो गया है इसलिए वो ब्राह्मण टीवी, टीवी का नाम जैन ब्राह्मण नहीं होता। तो हमारा नाम भी कहाँ जैन ब्राह्मण कुछ नहीं है। हम जन्म से एक मानव हैं और मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए शिवपुट बाधक है। इतना तथ्य समझ में आ गया तो धर्म की ओर आप आ सकते हैं, और यह धर्म ये किसी का नहीं, ये मानव मात्र का है। शिवपुट निकल गया तो आप केवल एक धर्मात्मा बन गए। अब आपको कुछ भी नाम रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उधर से आया, आप जैन दिखते हो, ऐसा कहा तो क्या दिखता हूं क्या मालूम आपको? उधर से कोई आया, तुम ब्राह्मण दिखते हो, हाँ ठीक है आपको ब्राह्मण दिख रहा हूं मैं। उधर से और आया, आप वैसे दिखते हो, अरे मेरे पास शिवपुट नहीं, मैं चार तरह से कैसे दिख रहा हूं? हाँ? मेरे पास कोई शिवपुट नहीं है, और ब्राह्मण भी दिख रहा हूं, वैश्य भी दिख रहा हूं, क्षत्रिय भी दिख रहा हूं और शूद्र भी दिख रहा हूं, ये क्या है? बिल्कुल दिख रहा हूं ना, मैं ब्राह्मण भी हूं, वैश्य भी हूं, शूद्र हूं। क्योंकि देखो ब्राह्मण का अर्थ क्या, ब्रह्मणी आत्मानि रमते इति ब्राह्मणः, जो आत्मा में रमन करता है नित्य, ब्रह्म ने आत्मा, आत्मा में रमन करने वाला ब्राह्मण, स्वयं के शुद्ध आत्मा में जो सतत रमनशील रहता है उसका नाम, उनका नाम ब्राह्मण। व्यक्ति ठीक बोल रहा है, मैं ध्यान में बैठा था, उसने देखा इसलिए उसने आकर के कहा कि तुम ब्राह्मण दिखते हो, बिल्कुल स्वीकार किया हमने, मैं ब्राह्मण हूं। मुनि ब्राह्मण है, मुनि वैश्य हैं, मुनि शूद्र हैं, मुनि क्षत्रिय भी हैं। उधर से आया एक व्यक्ति ने मुझे क्षत्रिय कहा, बिल्कुल हमने कहा कि ठीक कह रहे हो, मैं क्षत्रियता का ही काम करता हूं, क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मैं अपनी आत्मा की रक्षा करता हूँ, अपनी रत्नत्रय की रक्षा करता हूँ, अपने अनंत गुणों की रक्षा करने का प्रयत्न करता रहता हूँ। आत्मा कर्म के बंधन से बचे, हिंसा से बचे, हिंसा न हो आत्मा की, आत्मा का घात न हो, ये पुरुषार्थ करता हूँ। इसलिए क्षत्रिय हूँ, क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रियः। क्षत यानी पाप, हिंसा, घात, क्षत विक्षत कर दो कहते हैं ना, क्षत यानी हिंसा, पाप। उस हिंसा से जो अपनी रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। हाँ, टाइम हो गया एक शेपुट, ये एक शेपुट के कारण हमारा प्रवचन का पतंग कितना ऊंचा जा रहा है पता तक नहीं चला, टाइम गया। अब वैश्य, वैश्य कैसे, तो मैं वैश्य इसलिए हूँ, मेरा नाम श्रमण है, मैं व्यवसाय करता हूँ, अपने गुणों का व्यवसाय करता हूँ, अपने गुणों के विकास में तरक्कीशील रहता हूँ, तरक्की करता रहता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, रत्नत्रय का व्यापार करता हूँ, रत्नों को बेचता हूँ और अपना जीवन चलाता हूँ, गरीब। और वह व्यक्ति आकर के मुझे वैश्य कहता है तो क्या गलती है, वैश्य तो हूँ, असली वैश्य हूँ, आप सभी नकली वैश्य हैं, आप क्या बेचते हैं, आपके पास रत्न भी नहीं है, कपड़े बेच रहे हैं, बर्तन बेच रहे हैं, और मैं रत्नों को बेचता रहता हूँ। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये रत्न, ये रत्न कहाँ मिलते हैं, केवल चार परमिष्टि के पास रत्नत्रय व्यवसाय करते हैं, रत्नत्रय का व्यवसाय करने वाला वैश्य, ये असली वैश्य, बाकी सब नकली वैश्य। और शूद्र, मैं शूद्र हूं, शूद्र इसलिए हूं मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता, इसलिए मैं शूद्र हूं, अस्पर्श शूद्र हूं। कैसे महाराज, आप अस्पर्श, आपको कोई छू ही नहीं सकते, नहीं छू सकते मुझे, कौन नहीं छू सकते, तो मैं शूद्र हूं इसलिए मेरे से डरते हैं, तीन लोग डरते हैं, तीन लोग, कौन डरते हैं, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मुझे छूने से डरते हैं, क्यों, मैं शूद्र हूं, वो डर रहे हैं मुझे छूने के लिए। और तीन लोग हैं, और तीन लोग हैं मुझे नहीं छू सकते, वो भी डरते हैं, अनंत अनुबंधी, अप्रत्या के अनावरणी और प्रत्या के अनावरणी, ये कषाय मुझे छूने से डरती हैं, इसलिए मैं शूद्र हूं, हूं क्या नहीं। देखो, मैं वैश्य भी हूं, ब्राह्मण भी हूं, शूद्र भी हूं, क्षत्रिय भी हूं, तो मुनि सब कुछ है, ये सब कुछ क्यों हूं, ये असली चार वर्ण मेरे पास क्यों हैं, इसलिए हैं कि मेरे पास शेपुट एक नहीं है। एक शेपुट के न होने से मैं असली ब्राह्मण, असली क्षत्रिय, असली वैश्य, ऐसी असली शूद्र बन गया। टाइम हो गया, हम तो बन गए। उत्तम क्षमा आज का धर्म है, ये उत्तम क्षमा धर्म तीन चौकड़ियों के अभाव में उत्पन्न होता है। जिनके पास तीन चौकड़ियों के अभाव से उत्तम क्षमा प्रकट हुआ है, वो उत्तम क्षमा आराध्य आत्मा का गुण कहलाता है, वो उपास्य है, उसकी उपासना, उन गुणों की उपासना, उत्तम क्षमा आदि गुणों की उपासना आपने आज प्रातःकाल में की, और इसलिए कि हम भी अपने जीवन में ऐसे उत्तम क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं। हे पंच परमिष्टियों, हे अरहंत भगवंतों, हे गुरुओं, हे सच्चे गुरुओं, हे शिवपुट रहित गुरुओं, हम भी अपना शिवपुट निकाल करके आप जैसे बनना चाहते हैं। इस उद्देश्य से ही उत्तम क्षमा की पूजा आज हम किए हैं। ऐसी उत्तम क्षमा हमारे जीवन में कब आ जाएं, कब आ जाएं, कब आ जाएं, ऐसी प्रतीक्षा में हैं। जैसे शबरी राम की प्रतीक्षा करती थी, हम भी शिवपुट रहित पतंग बनने की प्रतीक्षा, उस घड़ी की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। यही उत्तम क्षमा का सारभूत प्रवचन है। इस सारभूत प्रवचन को जा करके चिंतन करो, एक ही विषय का चिंतन करो, हम भी शिवपुट रहित बने और चार वर्ण से युक्त होकर गुरु की कोटि में आए। आप गुरु बन गए तो चार खरे चार वर्ण वाले हो जाएंगे, और चार वर्ण वाले आप हो गए तो निश्चित रूप से शेष जो घाती कर्म हैं आपको छूने से डरेंगे वो, और आप केवल ज्ञानी बनेंगे, अरहंत बन जाएंगे। अरहंत बनने के बाद ही अघाती कर्मों को नाश करके हम मुक्त होते हैं। पंडित मरण नहीं करना है, पंडित मरण हमारी मंजिल नहीं है, पंडित मरण हमारी मंजिल है। और शिवपुट रहित हम आकाश को छुएंगे तो आत्मानुभूति भी होगी, और आकाश में ऊपर उड़ेंगे तो केवल ज्ञान की अनुभूति होगी, और भी आकाश में हमारा पतंग उड़ेगा तो उस समय पंडित मरण हो करके हमारा पतंग अमूर्त बन जाएगा। किसी को धरती पर से दिखेगा ही नहीं, सिद्धालय में जाकर के बैठेगा, हमारा आत्मरूपी पतंग नीचे वालों को दिखेगा नहीं, कहीं गायब। कहां गायब पता नहीं, बरमूडा ट्रायंगल में गायब। अहिंसा परमो धर्म की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।